हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 22 पार्ट 2। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है। इसमें हम भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में पढ़ते हैं। सुत गोस्वामी बताते हैं, नरदेव स्वमापन्ना सुरकार्याचिकीर्षया समुद्र निग्रहातिनि चक्रीवीर्यायतः परम्। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में आए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को अपने वश में करके तथा समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बरधारुण बिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति ये स्तवे वेदे साङ्गपत् क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि में भागवतम महापुराण की जय हो। परम सौभाग्य है कि हम इस पवित्र महीने में, कार्तिक के महीने में, भगवान श्री राम की कथा के विषय में पढ़ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, राम कथा कलिपंकज भरिणी, राम कथा कलिपंकज भरिणी, पुनि विवेक पावन कलि अरणी। अर्थात भगवान राम की कथा कलयुग रूपी सर्प के लिए भरणी के समान है। भरणी को जानते हैं, एक पक्षी है जो बहुत बड़ा है और उसके जो पर हैं उस पर इतने नोकीले ना कांटे लगे होते हैं, परंतु वो क्या करता है, चूहे की तरह सुकर के बैठ जाता है, मतलब इतना छोटा होके बैठ जाता है। होता विशाल है, उसके बहुत ही नोकीले पर होते हैं, परंतु वो अपने आप को सुकड़ के बिठा देता है। और जब सांप आता है तो सांप समझता है चूहा है, चूहे को खाने के लिए वो अपना मुंह खोलता है और सांप उस भरणी को निकल जाता है। परंतु जैसे ही यह भरणी पक्षी सांप के पेट में जाकर अपने पंख फैलाता है और उसके पंखों पर कई सारे नोकीले कांटे होते हैं और इन कांटों के द्वारा सांप के पेट को फाड़ कर बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार ये कलयुग सर्प की भांति है। और क्योंकि यह सर्प हमें निकलना चाहता है, परंतु यह भगवान की कथा उस कलयुग को चीर देती है और भगवान के भक्तों की रक्षा करती है। जो भगवान की कथा सुनता है उसको इस कलयुग का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। आगे कहते हैं संत तुलसीदास, राम कथा कलि काम दिगाई, राम कथा कलि काम दिगाई, सुजन संजीवनी मोर ही सुहाई। कि राम की कथा तो कामधेनु गाय की तरह है, और कामधेनु गाय क्या करती है, जितनी भी इच्छाएं हैं, समस्त कामनाएं हैं, वो पूरा कर देती है। और जिस जीव के हृदय में भगवत प्राप्ति की कामना है, तो राम कथा के अंदर इतना बल है, इतनी शक्ति है कि वो भगवान को प्राप्त करा सकते हैं। तो इस पवित्र राम कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। कल हमने सुना भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ और उसके बाद वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुनि वशिष्ठ के पास गए। भगवान को शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कहता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, मैंने ही समस्त वेदों की रचना की है और मैं ही समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। परंतु भगवान दिखा रहे हैं कि इस संसार में गुरु करना कितना आवश्यक है। ना सिर्फ भगवान ने गुरु किया, परंतु गुरुकुल में समस्त मर्यादाओं का पालन किया। गुरु के लिए वो लकड़ियां चुनने के लिए जंगल में जाते थे, गुरु की समस्त आज्ञाओं का पालन करते थे, गुरु की सेवा करते थे, उनके चरणों को दबाते थे, और वो दिखाना चाहते थे संसार को कि एक शिष्य को किस तरह से अपने गुरु महाराज की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और किस तरह से अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। शिक्षा पूरी करने के बाद राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पुनः अयोध्या में आए। जब ये चारों भाई पुनः अयोध्या में आए, मृत अयोध्या को जीवन दान मिल गया। चारों माताएं भगवान और उन समस्त भाइयों को देखकर प्रसन्न हो रही थी। महाराज दशरथ हृदय फूला नहीं समा रहा था खुशी से। अयोध्या में एक बार फिर खुशियां ही खुशियां भर गईं। परंतु कुछ दिनों के बाद ऋषि विश्वामित्र आए और कहने लगे महाराज दशरथ को कि वन में बहुत सारे राक्षस हैं जो कि हमें यज्ञ करने नहीं देते और हमारे यज्ञ को बिगाड़ देते हैं, हमें तपस्या नहीं करने देते, ब्राह्मणों को तंग करते हैं। हम आपके पास एक निवेदन लेकर आए हैं। महाराजा दशरथ ने कहा, कहिए हम क्या सहायता करें आपकी। विश्वामित्र ने कहा कि मुझे राम और लक्ष्मण दे दीजिए और ये राम और लक्ष्मण जो है वो समस्त असुरों का नाश करेंगे। महाराजा दशरथ ने जब सुना तो उनके नेत्रों से आंसुओं की झरी बह निकली। बोले, ऋषि मेरे फूल जैसे बालक हैं, अभी तो वो कितने छोटे हैं, वो कैसे राक्षसों को मारेंगे। इनकी बदली में आप मुझे ले जाइए, मेरी सेना को ले जाइए, हम करेंगे रक्षा आपकी और ब्राह्मणों की। परंतु विश्वामित्र ने कहा, नहीं, आप राम और लक्ष्मण के पराक्रम को नहीं जानते, वो साधारण नहीं है, मैं उन्हीं को लेने आया हूँ। महाराज दशरथ की इच्छा नहीं थी कि राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वनवास में जाएं, परंतु फिर भी उन्होंने आज्ञा दी विश्वामित्र के आग्रह पर। और जब वो वनवास में जा रहे थे तो रास्ते में तारकासुर का वध किया। सबसे पहले तारकासुर राक्षसी थी, बस भगवान श्री राम ने, अरे राम और कृष्ण के जीवन में एक बात आती है कि उन्होंने सबसे पहले जिस राक्षस का वध किया वो मतलब राक्षसी थी। राक्षसी यानी भगवान श्री कृष्ण ने पहले पूतना को मारा और श्री राम ने सबसे पहले तारका को मारा। तो तारका को मारने मतलब इनका मारने का क्या कारण, भगवान कहना चाहते थे सबसे पहले तो उस जड़ को खत्म करना चाहिए जहाँ से बहुत सारे असुर निकलने वाले हैं। वास्तव में भक्तों, भगवान ये शिक्षा देना चाहते हैं कि उस जननी का वध कर देना चाहिए, वो जीने के योग्य नहीं है जिसके गर्भ से असुर उत्पन्न हो रहे हैं। तो आगे उसके बाद भी भगवान ने बहुत सारे राक्षसों को मारा, परंतु मारीच जो कि ना रावण का मामा भी लगता था, उसको मारा नहीं, बल्कि उसको एक बाण मारा बिना फर वाला, यानी कि ऊपर जो बाण के ऊपर जो ऐसे नोकीला बना होता ना, वो नहीं बना हुआ था, बिना फर वाला बाण मारा, और वो भी हाथ से मारा, धनुष में डाल के नहीं मारा। वो इसलिए क्योंकि भगवान जानते थे कि आगे जाकर लीला में सहायता करेंगे। उसके बाद ना जब राक्षसों का वध हुआ और ब्राह्मणों की रक्षा हुई, यज्ञ संपन्न करने के लिए वो एकदम सुरक्षित हो गए, उसके बाद विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कहा कि कल महाराज जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर है, तो हमें मिथिलापुरी जाना है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी मिथिलापुरी में पधारे। सुबह को स्वयंवर था, महाराजा जनक ने इन सबको बहुत ही अच्छा रहने की व्यवस्था की। शर्मा जी, एक छोटा सा प्रसंग जो बहुत ही सुंदर है उसको हमें बीच में पढ़ना था, वो था अहिल्या उद्धार। अत्यंत ही सुंदर, जब राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जनकपुरी की ओर जा रहे थे तो रास्ते में अत्यंत ही सुंदर स्थान आया जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर घर बना हुआ था। और इसको देखकर श्री राम ने ऐसे विश्वामित्र से प्रश्न किया कि ये इस निर्जन स्थान में कोई नहीं रह रहा, ये कितना सुंदर स्थान है और कितना अच्छा लग रहा है, ये तुलसी का पौधा, वहाँ पर एक तुलसी का पौधा था, बोले सब कुछ उजड़ गया है, ये तुलसी का पौधा अभी तक दिख रहा है, एकदम हरा भरा है, तो इस स्थान की कोई महत्व है, आप हमें बताइए। तब ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को बताया कि यह स्थान ऋषि गौतम का स्थान है। एक बार ऋषि गौतम की पत्नी जिसका नाम अहिल्या था, अत्यंत ही सुंदर थी। जब ऋषि गौतम की पत्नी, मतलब वो अहिल्या को जब वो उत्पन्न हुई थी, तब सबकी, समस्त देवताओं की, असुरों की यही इच्छा थी कि ये हमें प्राप्त हो, परंतु ब्रह्मा जी ने उनका विवाह गौतम ऋषि से करवाया और वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसको देखकर एक बार इंद्र काम की विवश होकर उसको प्राप्त करना चाहता था, तो उसने क्या किया, मुर्गे का रूप धारण किया। और मुर्गा, पहले जमाने में जो भी ऋषि मुनि होते थे वो मुर्गे की आवाज सुनकर जागते थे, तो रात को ही जोर जोर से, जैसे अभी रात के 2 बजे थे, जोर जोर से मुर्गा मुर्गे की तरह बांग देने लगा। ऋषि ने समझा शायद प्रभात हो गई है, तो ऋषि गौतम जो है वो उठ के स्नान करने के लिए गए और वहाँ पर इंद्र जो है वो फिर से उसने गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया और अंदर जाके अहिल्या के साथ संभोग किया। जब ऋषि गौतम ने जब देखा कि अभी तो बहुत अंधेरा है, तो वो भी वापस से आने लगा कि शायद अभी रात ही है, तो अभी तो रात ही है, तो फिर अभी मुझे ना पूजा का समय नहीं हुआ है, तो वापस से घर आ रहा था। जब घर आ रहा था तो रास्ते में उसको आते समय घर से बाहर निकलते हुए इंद्र दिख गया। उसको देखकर ऋषि सब समझ गए और अहिल्या से जाकर पूछे कि ये कौन है। अहिल्या बेचारी कुछ बोल ना पाई, वो उसने जब ऋषि गौतम को देखा तब वो सोची कि अगर ये गौतम है तो वो कौन था। वो कुछ न बोली, परंतु गौतम ऋषि बार बार पूछ रहे थे, बताओ मुझे कौन था वो, बताओ मुझे, परंतु वो कैसे बोलती, उसके पास बोलने की कोई बात ही नहीं थी। और हाथ जोड़ के बैठ गई कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं खबर था वो कौन है। परंतु ऋषि गौतम ने समझा कि इस नारी का अब समाज में कोई सम्मान नहीं करेगा क्योंकि यह अपवित्र हो गई है, परंतु यदि भगवान अपने श्री चरणों का आश्रय उसे देंगे, क्योंकि भगवान तो पतित पावन है और जब भगवान के पवित्र श्री चरणों का स्पर्श से प्राप्त होगा तो यह पुनः पवित्र कहलाएगी। तो ऋषि गौतम ने कहा अब तो समाज इसे जीने नहीं देगा, इसलिए उसने अपनी पत्नी को यह श्राप दिया कि तुम पत्थर की शिला बन जाओ। और उसी समय गौतम नारी एक पत्थर की शिला बन गई और ऋषि ने इंद्र को भी यह श्राप दिया कि तुम्हारी शरीर पर हजारों नेत्र हो जाएं, नेत्र यानी पूरा शरीर इतना कुरूप हो जाए। और इंद्र, उसी समय इंद्र के शरीर पर बहुत सारे नेत्र, जैसे हाथ में भी नेत्र, आँखें हर जगह पर, मुंह पे, पैरों पे, जांघों पे, हर जगह पर आँखें ही आँखें खुला, क्योंकि तुम्हें दिखता नहीं है कि ऋषि पत्नी है, ये आपकी माता के समान है, इनका आदर करना चाहिए, हर जगह तुम्हें काम ही वासना नजर आती है, अब इतनी सारी आँखें हैं तो तुम्हें दिखेगा। तो यह सब कथा ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को सुनाई और फिर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राम यह अहिल्या कितने वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम अपने श्री चरणों को इसके ऊपर रखो, तुम्हारे चरण का स्पर्श पाकर ये धन्य हो जाएगी। श्री राम ने गुरु की आज्ञा प्राप्त करके अपने चरण को अहल्या के सर पर रखा और वह अबला नारी खड़ी होकर दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ को केवल निहार रही थी। बोलना तो चाहती थी परंतु मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। कारण गोस्वामी जी कहते हैं, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवही वचन कही, अति सही बड़ भागी चरण हिलाकी, युगल नयन जल धार बही। कि जब भगवान के श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ तो अपने आप को धन्य समझने लगी और उसके नेत्रों से जल धाराएं बहने लगी। वो रो रही थी, कुछ नहीं कह पाई। वास्तव में स्त्री के पास केवल एक ही धन है, कहते हैं ना, अबला तेरी यही कहानी। दिल में दर्द और आंखों में पानी, रोने के अतिरिक्त वो बिचारी कर भी क्या सकती थी। परंतु वो भगवान से कहना चाहती थी और बड़े ही निर्मल वचनों से अपने आप को संभाल कर भगवान से कहने लगी, अति निर्मल वाणी उस्तुति ठानी, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी। दिल में धीरज डालकर निर्मल वाणी से, कपट रहित से भगवान की स्तुति करने लगी और कहने लगी, मीनारिया पावन प्रभु जग पावन, मीनारिया पावन प्रभु जग पावन। हे प्रभु, मैं अपवित्र नारी, मेरे अंदर केवल अपराध ही अपराध, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया, परंतु आप तो समस्त जग को पावन करने वाले हैं। राजीवन लोचन भाव भयमोचन, पाही पाही शरण पड़ी। मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप समस्त जीवों को भवबंधन से छुड़ाने वाले हो। मुझ अपवित्र नारी पर आपकी असीम कृपा हुई है आज, और अपने पति की सराहना करते हुए कहने लगी कि कितनी कृपा की मेरे पति ने मेरे ऊपर, और कहने लगी, मुनि शाप जो दीना अति बल कीना, मुनि शाप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह मीमाना। मेरे पति ने मुझ पर कितना अनुग्रह किया, यदि वे मुझे शाप नहीं देते तो करोड़ों करोड़ जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी मैं कभी आपके दर्शन और आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त नहीं कर पाती। आपके दर्शन देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तपस्या करते हैं, तब भी उनको आपके चरणों को प्राप्त नहीं कर पाते। परंतु मेरे पति की मेरे पर इतनी कृपा, मुझ पर कितना उन्होंने कृपा की, कितना उपकार किया कि उन्होंने मुझे शिला बनाकर यहाँ पर बिठा दिया, और आज उन्हीं की कृपा से ही तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, अब आपको जो चाहिए वो मांग लो। अहल्या कहने लगी, हे प्रभु, मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे केवल इतना ही वरदान दीजिए कि जैसे मधु ग्रहण करने के लिए भंवरा फूल पर बैठता है, वो इतना आसक्त हो जाता है कि उसे पता है कि रात को कमल बंद हो जाएगा तो वो भंवरा मर जाएगा, परंतु वो उस कमल में इतना आसक्त होता है कि वहां से जाना नहीं चाहता। उसी प्रकार आपके चरण भी कमल के समान है और मैं भी वैसे ही आपके चरणों में आसक्त होना चाहती हूँ कि भले मैं मर भी जाऊं परंतु आपके चरणों में मेरी प्रीति समाप्त ना हो। श्री राम उसको मन मांगा वरदान देकर तथास्तु कहकर आगे चले गए। जनकपुरी पहुंचे, भरपूर स्वागत हुआ राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र जी का। सवेरे स्वयंवर था, परंतु सुबह उठने के समय ऋषि विश्वामित्र की पूजा के लिए राम पुष्प वाटिका से पुष्प लेने के लिए गए और उसी समय सीता मैया पार्वती माता से प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। उसी समय राम और सीता की प्रथम भेंट और सीता ने अपने हृदय में पार्वती माता से यही प्रार्थना की कि माता, यदि मुझे वर देना है तो केवल इसी सुंदर राजकुमार से मेरा विवाह करवाना। महाराज जनक ने ये प्रतिज्ञा की थी कि उनके पास एक शिव का धनुष था कि जो भी इस शिव धनुष को उठाएगा, क्योंकि जब सीता के जन्म की कथा भी बहुत अद्भुत है कि एक बार मिथिलापुरी में बारिश नहीं हो रही थी तो महाराजा जनक अपने हाथों से, वहाँ के राजा थे मिथिलापुरी के, और अपने हाथों से सोने का हल चला रहे थे धरती पर। तो उस समय वो हल किसी चीज़ से टकराया और निकाल के देखा तो वहाँ पर उनको एक छोटी सी कन्या मिली, उसका नाम उन्होंने सीता रखा। और फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, जब वो खेल में उसने क्या किया, जो बहुत बड़ा धनुष था जब शिवजी ने उन्हें दिया था तो महल तक लाने के लिए हजारों सैनिक इकट्ठे करने पड़े थे, लेकिन सीता खेल खेल में देखा कि वहाँ पर क्योंकि इतना भारी धनुष था कभी हटता नहीं था तो नीचे से बहुत मट्टी धूल जमा हो गई थी, तो सीता ने उसको साफ करने के लिए थोड़ा एक ही हाथ से ऊपर उठाया खेल खेल में और मट्टी साफ करने लगी। जब राजा जनक ने देखा तो उसी समय ये हृदय में प्रण किया कि मैं सीता का विवाह उसी से करवाऊंगा जो इस धनुष को उठा सके। तो यह प्रतिज्ञा की थी, सारे राजा, अनेक राजा आए, सब धनुष को हिलाने की, उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई उठाना तो बहुत दूर, कोई हिला भी नहीं सका। जब एक एक नहीं उठा सके तो दो दो मिलकर आने लगे, तीन तीन मिलकर आने लगे, दस दस मिलकर आने लगे, परंतु वो भी हिला नहीं सके धनुष को। राजा जनक बहुत दुखी हुए और बोले, अब जही को माखे बट नाही, वीर विहीन मही में जाने। अरे मुझे तो लगा था कि पृथ्वी पर बड़े बड़े वीर हैं, परंतु आज पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, मुझे इस आस को त्याग देना चाहिए कि सीता का विवाह होगा, सब अपने अपने घर पर चले जाओ। मुझे लगता है कि सीता का जीवन भर कभी विवाह होगा ही नहीं, सीता के जीवन में ब्रह्मा जी ने विवाह का संयोग लिखा ही नहीं है, इस सभा में मात्र नपुंसक बैठे हुए हैं। महाराज जी ने बहुत दुखी थे और इस तरह के शब्द उसके मुख से निकले। जब लक्ष्मण ने ऐसा सुना तो वो बहुत क्रोध में आ गए और कहने लगे, बस महाराज बस, जिस सभा में रघुवंश का कोई एक भी व्यक्ति हो उस सभा में किसी को भी इस तरह के शब्द उच्चारण करने का कोई अधिकार नहीं है, और इस सभा में रघुवंश शिरोमणि श्री राम बैठे हुए हैं, आप उनके सामने ऐसे कह रहे हो कि इस सभा में सब मात्र नपुंसक हैं। श्री राम की बात तो छोड़िए, यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा करे तो इस धनुष को, केवल इस धनुष को तो क्या, इस धनुष के साथ पूरे ब्रह्मांड को ऐसे उठा लूंगा जैसे बालक गेंद उठा देता है। श्री राम ने लक्ष्मण को कहा, नहीं लक्ष्मण, तुम क्रोध मत करो, आओ बैठ जाओ। और विश्वामित्र ने समय को देखते हुए, समय जब शुभ समय आया तो विश्वामित्र ने श्री राम को इशारा किया कि आप उठिए, अब वह घड़ी आ गई है, आप अपना पराक्रम जनक को दिखाओ। कथा तो आपने कई बार सुनी है, परंतु यहाँ से एक सिद्धांत आता है कि राम सब कुछ जानते थे कि मुझे इस धनुष को तोड़ना है, और राम के अंदर सामर्थ्य था, परंतु जब तक गुरु की आज्ञा नहीं तब तक वो अपने स्थान से हिले भी नहीं। परंतु आज के शिष्य, जब उनके अंदर थोड़ा सा भी सामर्थ्य होता है तो गुरु की अवज्ञा करते हैं। लेकिन भगवान ये सिखा रहे हैं कि भले हम कितने सामर्थ्य क्यों ना हो, परंतु जब तक गुरु की आज्ञा ना हो तो कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे ही विश्वामित्र ने आज्ञा दी, श्री राम ने धनुष को प्रणाम किया, जैसे एक बालक खेलते खेलते खिलौना उठाकर तोड़ देता है, वैसे ही जैसे ही श्री रामचंद्र ने धनुष उठाया और फौरन से उठाकर जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चलानी चाहिए, उसी समय धनुष टूट गया, भयंकर आवाज हुई, सूर्य पूर्व की ओर जा रहा था अब पश्चिम की ओर मुड़ गया, दिग्पाल चक्कर काटने लगे, समुद्र में पानी उछलने लगा, पर्वतों के शिखर टूटने लगे, देवताओं ने कान पर हाथ रख दिया, धरती कांपने लगी। इस प्रकार धनुष टूटने से अभिमानी राजाओं का अहंकार टूटा, सीता का वियोग टूटा, सुनैना की शंका टूटी, जनक की चिंता टूटी, और उसी समय जगत जननी माता सीता ने भगवान श्री रामचंद्र के गले में वरमाला पहनाई, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। और जब यह धनुष टूटने की आवाज ब्रह्मांड में फैल गई तो उसी समय परशुराम जी प्रकट हुए जनक की सभा में, देखा तो धनुष टूटा था, क्रोध से लाल पीले हो गए, जैसे बास को देखकर छोटे छोटे पक्षी भाग जाते हैं उसी प्रकार सारे छोटे छोटे राजा छिप गए, क्योंकि परशुराम जैसे क्षत्रियो को देखते थे अपने कुल्हाड़ी से उसे काट देते थे। तो राजाओं ने सोचा कि 21 बार क्षत्रिय से पृथ्वी को विहीन किया गया है, और अब यदि यह हमें देख लेगा तो फिर ये 22वां बार होगा। अत्यंत क्रोध से परशुराम बोले, जनक जल्दी बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है, यदि तुमने नहीं बताया तो सारी पृथ्वी को उलट पुलट कर लूंगा, मेरे सामने लाओ उसको। अत्यंत क्रोध में थे, उनका क्रोध शांत होने वाला नहीं था। इसको देखकर लक्ष्मण जी ने कहा, हमने तो बचपन में कितनी सारी धनुरियां तोड़ी, परंतु आज तक किसी ने हमें नहीं कहा, और आज कि इतना पुराना एक धनुष टूट गया तो आप इतने क्रोधित हो गए, आपका वेश तो साधु जैसा लगता है, परंतु नाम का वैराग्य है, एक इतने पुराने धनुष के अंदर इतनी आसक्ति। विश्वामित्र ने कहा, सॉरी परशुराम ने कहा, बालक समझ कर छोड़ देता हूँ, वरना अभी तुम्हें काट कर फेंक देता। लक्ष्मण ने कहा, मैं भी आपको साधु समझकर छोड़ रहा हूँ, हमारे परिवार में साधु और स्त्रियों पर वार नहीं किया जाता। और ये क्या, इतनी देर से परशु दिखा दिखा कर डरा रहे हो, कभी चलाया है, चलाना भी आता है या खाली दिखा रहे हो? परशुराम ने कहा, बस बस लगता है आज तो घर से कसम खाकर निकला है कि अपनी माँ को निपुति बनाएगा। ए जनक चुप करा इसे, अन्यथा इसकी पत्नी विधवा हो जाएगी और मां निपोती हो जाएगी। लक्ष्मण ने कहा, हे ऋषि, आप तो फूंक मारकर पर्वत उठाने की बात कर रहे हो, मैं कोई साधारण बालक नहीं हूं, परशुराम ने कहा, तू मुझे जानता है? 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर चुका हूँ, सहस्त्र भावों का नाम सुना है, उसकी 1000 भुजाओं को काटा है मैंने। लक्ष्मण ने कहा, जो वीर होते हैं वो बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। अगर इतना ही घमंड है अपने बाजुओं पर तो आ जाओ, युद्ध करो। श्री राम ने कहा, ऋषि परशुराम को कहा कि ये पराक्रम किसी ने तो किया है, और जिसने भी ये पराक्रम किया है वो आपका दास ही है। जब कोई बालक पराक्रम करता है तो माता पिता प्रसन्न होते हैं, उसे पारितोषिक देते हैं, दंड नहीं देते। ये कार्य भी तो आपके दास ही ने किया है। परशुराम ने कहा, कौन है तू जो बार बार अपना दास दास कहकर मेरे क्रोध को क्षमा करना चाहता है? श्री राम ने कहा, मेरा नाम राम है। परशुराम बोले, अच्छा, मेरा नाम रखकर तू समझता है कि मेरे से बराबरी करेगा? श्री राम ने कहा, नहीं भगवान, नहीं, मेरा तो छोटा सा नाम है, केवल राम, दो अक्षर का, परंतु आपका तो परशु समेत परशुराम है। इस संसार में मैं तो क्या, कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। तब परशुराम समझ गए कि ये वही है जिनकी मैं भक्ति करता हूँ, और भगवान श्री राम को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। विवाह हुआ, दशरथ जी को बुलाया गया, बहुत सुंदर बारात आई, चारों भाइयों का विवाह हुआ, और ये बारात जब अयोध्या में गई, जिस प्रकार हम कभी दूल्हा दुल्हन होते हैं, उनको हम पति पत्नी को जब पहले बार देखते हैं तो मुंह दिखाई दी जाती है, उसी प्रकार केकई ने जब पहली बार सीता को देखा तो मुंह दिखाई के तौर पर उसे 1000-2000 और ये सोने के गहने वगैरह नहीं दिए। सोने का महल कनक भवन जिसमें केकई रहती थी वो सीता को दिया कि बेटी आज से तुम ये रखो। गोस्वामी जी तुलसीदास लिखते हैं कि जब से सीता और अवध में आई थी, लक्ष्मी के समान जैसे उसके चरण अवध में पड़े थे, पूरे अवध में आनंद ही आनंद आ गया था। रोज नित नए मंगल उत्सव हो रहे थे, सब लोग भगवान का दर्शन करके प्रसन्न हो रहे थे, और सबकी इच्छा हुई कि श्री राम को राज्य अभिषेक कराया जाए। कथा तो आप सब जानते हैं। श्री राम के राज्य अभिषेक के दिन केकई ने महाराजा दशरथ से अपने पिछले वरों की मांग की, और जिसके फलस्वरूप श्री राम को 14 साल का वनवास मिला। वास्तव में भक्तों, ये केकई बुरी नहीं थी, परंतु इसने कुसंग किया था। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यदि वैष्णव बनना है तो सबसे पहले असत्य का त्याग करो, क्योंकि मंथरा जो केकई की दासी थी उसने कहा, देखो तुम रानी हो, अगर राम राजा बन गया तो तुम दासी बन जाओगी। केकई मंथरा की बातों में आ गई। इसलिए कहते हैं, हमें केवल भक्तों का ही संग करना चाहिए, और जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, यदि हम उनकी बात में आएंगे, उनका संग करेंगे, तो अवश्य ही सर्वनाश हो जाएगा। केकई के इस दुराचार से उसका पति छूटा, पुत्र भी उससे दूर हो गया, और वो जीवन भर विधवा, कलंकिनी और अपमानित होकर जीती रही। जब दशरथ महाराज ने सुना कि केकई श्री राम को 14 साल के वनवास जाने का वर मांग रही है, तो उसने कहा, तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, परंतु भले राज भी भरत को दे दो, परंतु राम को वनवास के लिए मत कहो। लेकिन केकई मानने के लिए तैयार ना थी, और श्री राम को जब पता चला कि पिताजी इसलिए दुखी हैं, तो उनके हृदय में जरा भी दुख नहीं हुआ, और कहने लगे, बस पिताजी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने दुखी हो रहे हो? यदि माता चाहती हैं तो मैं अभी वन के लिए चला जाता हूँ, परंतु आप दुखी मत होइए। श्री राम वनवास जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उसी समय सीता ने कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके बगैर मैं कैसे जी सकती हूँ, मुझे भी आपके साथ जाना है। राम ने कहा, नहीं सीता, वन में बहुत सारे राक्षस हैं और तुम कितनी सुकोमल हो। वन में बहुत सर्दी, बहुत गर्मी, तपिश, धूप, इस सब को तुम नहीं बर्दाश्त कर सकोगी। सीता ने कहा, आप मेरे पति हैं, मैंने अग्नि के सामने साक्षी होकर ये प्रण लिया है कि जो आप भोगोगे वही मैं भोगूंगी। आप वन में जाओ और मैं यहाँ राजमहल में सुख से रहूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपके साथ जाऊंगी। तो श्री राम ने कहा, अगर तुम इतनी हट कर रही हो तो ठीक है, चलो मेरे साथ। जब लक्ष्मण को ये पता चला, वो बहुत क्रोध में आ गए कि कौन है वो जिसने श्री राम को वनवास भेजने की आज्ञा की है, मैं उसे अपने धनुष से मार डालूंगा। तब श्री राम ने कहा, रुको लक्ष्मण, पहले पता करो कि किस क्या हो रहा है। मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूँ क्योंकि माता की कामना है, तो मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं कहा है। तो लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा क्योंकि आपके बगैर मेरा अस्तित्व ही नहीं है। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण अगर तुम चलना ही चाहते हो तो जाओ, अपनी माता से आज्ञा लेकर जाओ। जब आपकी माता सुमित्रा आज्ञा देगी तो ही आप मेरे साथ चल सकते हो। लक्ष्मण सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए जा रहा था, हृदय में यही हो रहा था कि माता बोले कि तुम्हें तो वनवास नहीं मिला है, तुम क्यों जा रहे हो। परंतु आज सुमित्रा एक आदर्श माता का कर्तव्य निभा रही है। शास्त्र कहता है, माता न सस्यात्, वो माता माता कहलाने के योग्य नहीं है जो अपने अपने संतान को भगवान का भक्त नहीं बनाती। सुमित्रा कह रही है, राम के लिए सेवा करने के लिए जाना है और तुम उससे पूछ रहे हो। लक्ष्मण तुम्हारा तो जीवन ही राम की सेवा के लिए बना है, तुम जाओ और देखो। जब तक श्री राम जागते रहेंगे तुम उनकी सेवा करना, और जब सो जाएंगे तो पहरा देना। अपने भाई और भाभी को कभी कोई कष्ट न होने देना। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए चले गए। समय बीता। एक समय शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, उसने सीता को और श्री राम और लक्ष्मण को देखा। कथा तो आप सब जानते हो। जब रावण ने सीता के स्वरूप सुंदरता के विषय में जब सुना, तब रावण ने मारीच को हिरण बनाकर भेजा। सीता ने देखा और कहा, स्वामी कितना सुंदर हिरण है, मुझे ये चाहिए, कितना प्यारा लग रहा है, मैंने आज तक कभी भी इतना सुंदर हिरण नहीं देखा। श्री राम ने कहा, ये हिरण क्या करोगी। तो सीता ने कहा, जब हम अयोध्या चलेंगे तो इसको अपने साथ लेकर चलेंगे, मैं इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी और जब महल में चलेगा चम 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 की आवाज आएगी तो सारी माताएं कितनी प्रसन्न होंगी, और देखो इसके सींग कितने अच्छे हैं, सोने का लग रहा है, मुझे चाहिए, आप मेरे लिए मेरी इतनी सी इच्छा नहीं पूरी कर सकते। तो श्री राम ने कहा, अगर मैं इसको पकड़ने जाऊं और मेरे बाण से ये मर जाएगा फिर। तो सीता ने कहा, फिर भी कोई बात नहीं, देखो इसकी चरम कितनी सुंदर है, आप जब ध्यान में बैठोगे तो फिर इसको हम इसकी चरम को ना आपके लिए पूजा स्थली का आसन बना दूंगी, आप जाइए, बस ये मुझे चाहिए, मुझे लेकर आइए मेरे लिए। तो ना श्री राम ने कहा लक्ष्मण को, ये मानेगी नहीं और मुझसे कभी कुछ मांगती भी नहीं है, आज इतना अनुग्रह कर रही है तो मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, लेकिन वन बहुत खतरनाक जगह है, तुम यहाँ पर उसकी रक्षा करना, कुछ भी स्थिति हो जाए इसे अकेला मत छोड़ना। तब जब श्री राम चले गए और हिरण बहुत देर तक पीछा करने के बाद जब श्री राम ने तीर मारा, हिरण जो वास्तव में मारीच था जोर से चिल्लाया, हे सीते, हे लक्ष्मण, आवाज सीता तक पहुंची और फिर उसने लक्ष्मण से कहा, जाओ तुम्हारा भाई तुम्हें संकट में है और तुम्हें बुला रहा है और तुम यहाँ पर खड़े हो। तब लक्ष्मण ने कहा, नहीं भाभी, कोई भी संकट श्री राम के लिए संकट नहीं बन सकता। तब सीता ने कहा, राम संकट में है और तुम सीता की रक्षा करने की बात कर रहे हो। जब राम ही नहीं रहेंगे तो फिर किसकी रक्षा करोगे मेरे मृतदेह की? तब भी लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे। तब सीता ने बड़ी कठोर बात कही और कहा, अब मैं समझ गई, तो इसीलिए वनवास आए हो कि किसी भी तरह से तुम्हारा भाई जब संकट में आ जाएगा तो तुम मुझे भोग करना चाहते हो। लक्ष्मण सुन नहीं पाया और कहा, भाभी आप अंदर जाइए। और लक्ष्मण रेखा खींच कर वो वहां चला गया जहां से आवाज आ रही थी। जब श्री राम ने लक्ष्मण को देखा तो समझ गया कि ये किसी असुर की कूटनीति है और कहा, लक्ष्मण मुझे लगता है अब सीता हमें उस कुटिया में नहीं मिलेगी। श्री राम लक्ष्मण हर जगह सीता को ढूंढ रहे थे। अत्यंत ही विलक्षण विलाप किया श्री राम ने। वाल्मीकि जी रामायण के 10 अध्याय में श्री राम के विलाप की कथा लिखते हैं, अद्भुत विलाप। वे कहते हैं, हे खग हे वृक्ष मधुकर शेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। परिंदों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, भंवरों से पूछ रहे हैं, वहां से जो सुमेर पवन गुजर रही है उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? भगवान की अद्भुत लीला है। भगवान कहते हैं, जन्म कर्म समे दिव्यम। कोई आज का साधारण व्यक्ति भी यदि उसकी कोई पत्नी खो जाएगी तो फिर भंवरों से, वृक्षों से, परिंदों से तो नहीं पूछेगा ना, वो भी है ना। लेकिन श्री राम जो है वो ऐसी लीला कर रहे हैं जिससे बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। भगवान शिव की पत्नी सती भी भगवान की इस लीला को समझ न सकी और परीक्षा लेने के लिए उनके पास चली गई। भगवान श्री राम ने सती को देखकर कहा, माते आज आप अकेले, शंकर शिव जी नहीं आए आपके साथ? तब सती को पता चला कि ये भगवान हैं और लीला कर रहे हैं। आगे चले, समय बीता, हनुमान से भेंट हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई सीता की खोज के लिए। सब आगे बढ़े, फिर हनुमान सीता माता का पता लगा कर जब आ गए तो अब लंका तक जाने के लिए बहुत बड़ा अथाह समुद्र पार करना था। इसके लिए श्री राम ने कई दिन तक समुद्र से प्रार्थना की। श्री राम समर्थ थे परंतु फिर भी विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए समुद्र से प्रार्थना करते रहे, परंतु समुद्र ने श्री राम की बात को सुना ही नहीं। और तब श्री राम ने बहुत क्रोध किया और कहा, मैंने इतने दिन तक आपसे विनती की परंतु आप अपने अहंकार के कारण जूं के तू बने रहे हैं। आज तक संसार ने राम का विनय देखा है, विनम्रता देखी है, परंतु आज संसार राम का क्रोध देखेगा। और ऐसे कहकर जैसे ही श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई धनुष पर, समुद्र उसी समय प्रकट हुआ और कहने लगा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई। जो भगवान के शरण में आ जाता है भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। परंतु श्री राम ने कहा, आप ये उपाय बताइए कि हम समुद्र को कैसे पार करें। तब समुद्र ने कहा कि आप समुद्र पर सेतु बनाइए और उस सेतु से पूरी संपूर्ण सेना सुरक्षित लंका तक पहुंच जाएगी। और भगवान की इसी लीला का कथन हमारे आज के श्लोक में शुद्ध कहते हैं, समुद्र निगृहादीनी चक्रीवीर्यायतः परम। के भगवान ने इतना अति मानवीय कार्य किया कि समुद्र पर सेतु बनाया। भगवान समर्थ थे, वे कर सकते थे, वो भगवान को वानरों की सहायता की आवश्यकता ना थी, भगवान को समुद्र पर सेतु बांधने की भी आवश्यकता नहीं थी। भगवान यदि चाहते तो एक ही बाण से पुल बना देते और फिर समस्त जितने भी रावण थे, जितने भी राक्ष वानर थे, सेना थी, वो उस समुद्र को पार कर सकती थी। भगवान दिखाना चाहते थे कि संसार में भगवान से भी, भगवान के नाम में अधिक बल है। तो एक एक पत्थर पर राम का नाम लिखा गया और जैसे उस पत्थर को, चाहे कितने भी बड़े बड़े पत्थर बहुत ही भारी होते थे, परंतु जैसे उस पर राम का नाम लिखकर उसको समुद्र पर रखा जाता था तो वो डूबते नहीं थे, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते कि इस संसार में समस्त जीव पत्थर की भांति हैं और यह संसार समुद्र की तरह है और जीवन मृत्यु के इस समुद्र में जीव बारंबार डूब रहा है। क्यों? केवल इसीलिए कि उनके हृदय में भगवान का नाम नहीं है। यदि हम भी अपने हृदय पर भगवान के नाम को लिखेंगे तो हम इस जीवन मृत्यु के समुद्र को अत्यंत ही सरलता से पार कर लेंगे। भगवान के लिए सब कुछ संभव है। कुछ लोग कहते हैं कि कैसे संभव हो सकता है कि इतने भारी भारी पत्थर समुद्र के ऊपर रखे, क्योंकि हम अगर समुद्र के अंदर छोटा सा भी एक कंकड़ डालते हैं, हम देखते हैं ना, ऐसे डालते हैं टपक करके अंदर चला जाता है, तो इतने बड़े बड़े पत्थर वो कैसे नहीं डूब रहे थे। भगवान के लिए कुछ भी संभव है। हाँ, कुछ भी चीज भगवान के लिए असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान अगर समुद्र पर पत्थर फेंकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के लिए पत्थर को समुद्र में तैराना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल भगवान की इच्छा से इतने बड़े बड़े ग्रह हवा में तैर रहे हैं, ये पृथ्वी जिसपे इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं वो भी घूम रही है, और इस पृथ्वी से कई गुना भारी ग्रह सूर्य वो भी केवल भगवान की इच्छा से ही हवा में तैर रहा है। All planets are floating in the space very perfectly. कभी टक्कर नहीं होता, कभी एक्सीडेंट नहीं होता। जब भगवान इतने बड़े बड़े ग्रहों को हवा में तैरा सकते हैं, तो पत्थर को पानी पर तैराने भगवान अगर कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए। और जितना पावर भगवान के अंदर है उतना ही पावर भगवान के नाम के अंदर ही है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही तत्र अर्पिता, कि भगवान ने अपने नामों में अपनी समस्त शक्तियां अर्पित कर दी हैं। यदि हम भी अपने हृदय अपने मुख पर सदैव भगवान का नाम लेते रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर हम भी बारंबार जन्म मृत्यु के सागर में कभी भी नहीं डूबेंगे और भगवान के चरणों की रज प्राप्त करके भगवान के लोक में स्थान प्राप्त करेंगे। परंतु जो भगवान की शरण नहीं लेते, चाहे वो रावण की तरह कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अवश्य परास्त होंगे, क्योंकि जीत वही होती है जहाँ भगवान और भगवान का नाम होता है। कलाई वनास्तय 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 गतिरन्यथा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।